الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم یہ جو آج کی مجلس ہے یہ اس سال کی آخری مجلس ہے ضابطے کے اعتبار سے. بیان تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدظلوم کو کرنا تھا لیکن وہ اس وقت موجود نہیں ہے, تو اس لیے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. یہ ان کو کہو یوں کر یوں ہو کے بیٹھے ہیں, آگے ہو کے بیٹھ جائیں, ٹیک نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ نے جوان بنایا تو جوانی کا ثبوت دیں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے, آپ کو ایک نعمت جوانی کی دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر, تو ثبوت دیجئے, اس کو ظاہر کیجئے. الحمدللہ ہم جوان ہیں, جوان ہوتے ہوئے بوڑھے نہیں بننا چاہیے, اس لیے ٹیک نہ لگائیں اور طلب کی صورت بنا کے بیٹھیں. جو طلب کی صورت بنا کے بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. اور ٹیک لگانا, ٹانگیں پھیلا لینا, موبائل سے کھیلنا, یہ سب عدم طلب کی صورت ہے, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی بات کے نور سے محروم فرما دیتے ہیں, عمل سے محروم فرما دیتے ہیں. سأصرف عن آیاتی الذین, کیا ہے, سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات پر ان کو عمل کی توفیق نہیں دیتے, ایسے لوگوں کو بے ادبی بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اچھا بھائی, گزارشات یہ کرنی ہے, میں بس جلدی آپ کو فارغ کر دوں گا تاکہ آپ چائے بھی پی سکیں, جن کو چائے کی حاجت ہو چائے بھی پی سکیں, مغرب سے پہلے پہلے مغرب کی تیاری بھی کر سکیں. چونکہ ضابطے کے اعتبار سے یہ آخری مجلس ہے اور اس کے بعد امتحان ہوں گے, امتحانات کے بعد بہت سے طلبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے, بہت سے جماعت میں جائیں گے, تشکیل تعطیلات میں ان کی تشکیلات ہوں گی, ہے نا بھائی, بہت سے طلبہ دیگر مصروفیات کے لیے کہیں اور جائیں گے, بہت سے طلبہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے. بالآخر سب کے سب اپنے گھروں کو رمضان سے پہلے عام طور پر واپس لوٹ ہی جاتے ہیں, اور عید اپنے گھروں پر گزار کر پھر مدارس کا رخ کرتے ہیں دوبارہ. آپ جب اپنے گھروں کو جائیں تو چونکہ طلبہ سے تعلق رہتا ہے اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں, بہت سے طلبہ یہاں سے اپنے گھر کو جاتے ہیں, اور چونکہ ان کے ہاں شرعی پردہ نہیں ہے اس لیے وہ خوب مسافہ بھی کر لیتے ہیں نامحرموں سے, مسافہ نہ بھی کریں تو آمنا سامنا ہو جاتا ہے, ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. کبھی ہم نے محاسبہ کیا اپنا کہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ شرعی پردہ جو ہم نہیں کر رہے ہیں اپنی بھابھی سے, ماموزاد, چچا زاد, خالہ زاد, پھوپی زاد, جتنی زاد بہنیں ہیں ان سے, और फिर मुमानी चची और ताई से, ये जो हम पर्दा नहीं करते और बेमुहाबा उनसे मिलते हैं, और बाज हमारे तलबा तो मुबालगा करके, मैं तरक्की करके ये बात कहता हूं कि वो तो हाथ भी मिला लेते हैं, मुसाफा भी कर लेते हैं, ये कब तक जारी रहेगा? और कभी हमने ये सोचा कि अगर हम खुद ये काम कर रहे हैं तो उम्मत को कैसे रोकेंगे? क्या हमारी बात में असर रहेगा? एक आदमी खुद अमल नहीं कर रहा, वो ठीक है, उसके लिए जायज है, एक चीज पर उसका अमल नहीं है तो वो मिंबर पे बैठ के वो कह तो सकता है कि जायज तो है उसके लिए कि हां भाई ये गुनाह है, ये नहीं करना चाहिए। वो मौलाना खैर मोहम्मद जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हकीमुल उम्मत के बहुत बड़े खुलाफा में से हैं, खैरुल मदारिस मुल्तान में उन्हीं का कायम किया हुआ है, और इस वक्त जो हमारे मौलाना कारी हनीफ जालंधरी साहब हैं उनके दादा थे, उनके सगे दादा थे मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत के बहुत बड़े खुलाफा में से हैं। आसार खैर इनकी किताब आती है, पढ़ने के काबिल किताब है, मुताले के काबिल किताब है। उसमें उन्होंने एक बात, अपने मारिफ भी लिखे हैं, अपने तजर्बात भी लिखे हैं, अपने हालात भी लिखे, बड़ी अजीब अजीब चीजें उसमें जमा की हैं। एक बात यह भी लिखी है कि एक दफा मैंने हकीमुल उम्मत को खत लिखा कि हजरत एक चीज पर मेरा अमल ही नहीं है, मैं तो जुम्मा पढ़ाता हूं, बयान करता हूं, एक चीज पर मेरा अमल ही नहीं है, मैं उस पर रद्द भी करता हूं, मेरा अमल खुद नहीं है उस पर, लेकिन मैं उसका रद्द करता हूं कि भाई ये गलत है, ये गुनाह है, लेकिन उस गुनाह पर मैं खुद अमल कर रहा हूं, खुद गुनाह कर रहा हूं। तो मैं, मुझे ये वाहिमा गुजरता है, दिल में ख्याल आता है कि मेरा ये अमल इस आयत के ज़ैल में दाखिल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। हाँ, ये फरमाया था कि एक चीज मैं करता नहीं हूं और दूसरों को तरगीब देता हूं उसकी, ये फरमाया। तो इस पर ये फरमाया कि मैं ये ख्याल करता हूं कि ये इस आयत के ज़ैल में दाखिल हो गया कि तुम लोग कहते क्यों हो जब तुम करते नहीं हो उस चीज को। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये आयत तरके दावा के लिए है, तरके दावत के लिए नहीं है। बहुत प्यारा जवाब दिया, हकीमुल उम्मत के उलूम है ये। फरमाया ये आयत तरके दावा के लिए है, तरके दावत के लिए नहीं है। मतलब ये है कि जिस चीज को तुम करते नहीं हो उसका दावा मत करो कि मैं ये करता हूं, मैं ये फुला नेक अमल करता हूं, उसका दावा कर दिया, करते हैं नहीं, उस पर है ये आयत, लेकिन इस पर नहीं है। मसलन एक आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ता और वो जाहिर ये करता है और बातें ऐसी करता है कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, तो ये इस आयत के ज़ैल में दाखिल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। लेकिन एक आदमी जो तहज्जुद नहीं पढ़ता उसके लिए ये कहना जायज है कि हां भाई तहज्जुद पढ़नी चाहिए, तहज्जुद का बड़ा सवाब है, तहज्जुद के बड़े फायदे हैं, ये कहने में उसके लिए कोई हर्ज नहीं। तो इस पर फरमाया कि ये आयत तरके दावा के लिए है, तरके दावत के लिए नहीं है। दावत तो दो, दावा मत करो जब तुम करते नहीं हो। तो भाई जायज तो है हमारे लिए, ये तो अमर बिल मारूफ का मामला हुआ, नहीं अनिल मुनकर को भी इसी पर कयास कर ले। तो अमल जो करता है उसके अनवारात ही अलग होते हैं, इसलिए जब तक हम ये शरई पर्दा नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी बात में असर नहीं होगा। और यही वक्त है, अगर आप फारिग हो गए, फारिग होकर आपने अमली जिंदगी का आगाज कर दिया और शरई पर्दा शुरू नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपको शरई पर्दा करना। अभी तो आप एक बहाना बना के कह सकते हैं, हाँ भाई हमारे यहां, हम मदरसे में पढ़ते हैं, हमारे असातिज़ा ने हमें नसीहत फरमाई है, और हमारे मशाइख ने, हमारे बुजुर्गों ने, जो यहां बयानात होते रहते हैं उसमें ये नसीहत हमने सुनी है, इसलिए हम शरई पर्दा कर रहे हैं। आप खत भी लिख सकते हैं, आप मोबाइल पे आप बात करके आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हमने तौबा कर ली, अब आइंदा हमसे कोई ना मिले, हम मिलना नहीं चाहते ना महरमों से। नरमी के साथ ये बात कह दीजिए, ये अभी वक्त है। अगर आपने अभी नहीं किया तो बाद में आप बहुत मुश्किल होगा आपके लिए शरई पर्दा करना। एक बात तो ये मुझे अर्ज करनी है, जो हमारे यहां इसकी कमी पाई जाती है और जो तलाबा से ताल्लुक है उसमें ये बातें सुनने को मिलती हैं, उन्होंने कहा है इसमें कमजोरी है उनकी। अभी अल्लाह से हिम्मत और दुआ मांगे, हिम्मत की तौफीक मांगे और अल्लाह का नाम लेकर इसका इरादा करें। और अब जो आप तातीलात में घर जाएं तो शरई पर्दे के एहतमाम के साथ जाएं। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं ये सब बहाने की बातें हैं कि दो कमरों का घर है तो शरई पर्दा नहीं हो सकता भाभी से। हजरत ने फरमाया भाभी को चाहिए कि वो सर से मामूली लिबास पहने, जर्क बर्क लिबास में ना रहे, सर से पैर तक कोई लंबी चादर इस्तेमाल करें और जब उसको अपने देवर के सामने से गुजरना हो तो घूंघट डाल के गुजर जाए लीजिए। और देवर को चाहिए, ये तो भाभी का मामला हुआ, देवर को चाहिए कि अपनी निगाह नीची कर ले। ले भाई, दो कमरों के घर में भी शरई पर्दा हो सकता है। दो कमरों का घर है, एक घर एक कमरे में एक भाई रहता है अपनी बीवी के साथ और एक कमरे में दूसरा भाई रहता है अपनी बीवी के साथ, ऐसे घर में भी शरई पर्दा हो सकता है। हजरत ने ये तरीका सिखा दिया। ये सब बहानेबाजियां हैं कि नहीं हो सकता और बड़ा मुश्किल है और ये घर बहुत छोटे छोटे हैं, फ्लैट हैं, ये सब बहाने हैं। तू ही अगर ना चाहे, बहाने हजार हैं। अगर हम ही नहीं चाहते अल्लाह के किसी हुक्म पे अमल करना तो हजारों बहाने हमें मिल जाएंगे उसके, लेकिन जो अमल करना चाहता है वो बहाने तलाश नहीं करता। जिसका मुसम्मम इरादा अमल का हो वो बहाने तलाश नहीं करता, वो अमल करता है। और करने के काम तो भाई करने से होंगे। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं करने के काम तो करने से होंगे, कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए अभी से इरादा करें और इस पर अमल करें। दूसरी बात यह अर्ज करनी है कि आप चूंकि मदरसे से ताल्लुक रखते हैं इसलिए आपकी मिसाल एक सफेद कपड़े की तरह है। काला कपड़ा हो या किसी गहरे रंग का कपड़ा हो, उस पर धब्बे लग जाएं, वो पता बाज़ औकात पता भी नहीं चलते। गर्द लग जाए, धब्बा लग जाए, दाग लग जाए, उसका पता भी नहीं चलता। लेकिन सफेद कपड़ा हो, बिल्कुल सफेद, उस पर जरा सा धब्बा भी नुमाया नजर आता है, तो आप यूं समझें कि आपकी मिसाल सफेद कपड़े की तरह है। जरा सा धब्बा आपके ऊपर होगा, आपके अंदर खराबी होगी, लोग उसको देखेंगे, अरे, और लोग क्या देखेंगे, शैतान उनके कान में सरगोशी करेगा, देख रहा हूं मदरसे में पढ़ता है और इसकी हरकत देखो, ये क्या कर रहा है, फौरन सरगोशी करेगा आके। हम शैतान को मौका क्यों दें? शैतान कहता है जरा इसकी नमाज देखो, कैसी नमाज पढ़ रहा है, वो मदरसे में पढ़ता है, आलिम बन रहा है ये, और ये हाफिज है, इसकी नमाज देखो कैसी नमाज पढ़ रहा है। कोई मामला उसने कर दिया, देखो इसका मामला, कोई गुस्से में आके कोई बात कह दी, वो शैतान कहेगा देखो ये आलिम है या तालिबे इल्म है, फुला मदरसे में पढ़ता है, देखो इसके उस्ताद ये तरबियत दे रहे हैं इसको। इस तरह करके वो दीन से लोगों को मुतनफिर करता है। जरा जरा सी हमारी खामियां हो या बड़ी खामियां हो वो दिखाता है, ये देखो ये मौलवी लोग क्या कर रहे हैं। एक साहब, वो उनसे कुछ गलती हो गई साइकिल चलाते हुए, तो एक साहब ने कह दिया, बन वो दाढ़ी थी उनकी, दाढ़ी रख के ये काम कर, दाढ़ी रख के तुम ऐसे साइकिल चलाते हो। उन्होंने कहा दाढ़ी है, कोई ब्रेक थोड़ी है, उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया था, समझे, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को लग गई, टक्कर लग गई। उन्होंने कहा दाढ़ी रख के ये करते हो? उसने कहा भाई दाढ़ी है, कोई ब्रेक थोड़ी है। डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आपके आपकी तो दाढ़ी है और आपके बेटे की दाढ़ी नहीं, उस वक्त नहीं थी, अब तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त नहीं थी तो किसी ने कह दिया कि आपकी तो दाढ़ी है, आपके बेटे की तो दाढ़ी नहीं है। अब शैतान ने ये बात भी सुझा दी उन साहब को, देखो कैसे बुजुर्ग बने फिरते हैं और इनके बेटे की दाढ़ी नहीं है। तो डॉक्टर साहब से भी कह दिया उस शख्स ने आकर एतराजन, आपकी तो दाढ़ी है, आपके बेटे की तो दाढ़ी ही नहीं है। तो फरमाया मेरी दाढ़ी होना ही इस बात की दलील है कि मैं अपने बेटे के बारे में चाहता हूं और तरगीब देता हूं कि उसकी भी दाढ़ी हो। तो भाई ये दाढ़ी, ये टोपी या इमामा और फिर इल्म दीन की निस्बत, ये सब चीजें जमा हो गई तो हम बिल्कुल सपाट सफेद कपड़ा हो गए। जरा सा उस पर धब्बा होगा वो भी हम वो जैसे नुमाया नजर आता है, वो लोगों को नुमाया नजर आएगा और लोगों को नहीं देखेंगे कहां वो जो चाहे करते नहीं। ये तो तालिबे इल्म है, ये मौलवी है, ये आलिम है, ये मुफ्ती है, ये फुला मदरसे में पढ़ता है, इस बात को लोग देखेंगे। इसलिए आप कोई अमल ऐसा ना करें अपने घर में कि हमारे अखलाक से कोई बद अखलाकी से कोई बदगुमान हो जाए हमारे बुजुर्गों से और इस मदारिस के सिलसिले से। इसीलिए अखलाक की तरबियत बहुत जरूरी है। तो ये भी हमें काम करना है कि हमारा लेन देन, हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, जब हम घर जाएं तो हमारा उठना बैठना, हमारा लेन देन, हमारा अंदाज, हमारा गुफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारे तौर तरीक दूसरों से हटकर हो, मुख्तलिफ हो, उसमें से झलक आती हो कि हां भाई वाकई ये तरबियत लेके आया है, ये सही जगह पे जाके पढ़ता है, इसकी तरबियत सही लोग कर रहे हैं, इसकी तालीम और तरबियत सही जगह पर हो रही है। लोग ये कहने पर, सोचने पर मजबूर हो जाएं हमारा तर्ज अमल देखकर, तब तो आप कामयाब हैं, वरना बहुत कुछ मेहनत की जरूरत है। तीसरी बात, ये दो बातें हो गई, तीसरी बात ये अर्ज करनी है कि जैसे मैं अर्ज करता ही रहता हूं, हमारे जो उस्ताद हैं हजरत मुफ्ती अब्दुल रऊफ गजनवी साहब मुद्दज़िल्लोम, उनका मैं वाकया सुनाता रहता हूं कि वो मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह जलालाबादी उनके पास गए थे और उनसे नसीहत की दरख्वास्त की, तो उन्होंने फरमाया एहतसाब का इल्तिजाम इख्तिलात से इज्तिनाब, ये उनकी नसीहत थी। एहतसाब का इल्तिजाम, अपना खुद मुहासबा करते रहे इल्तिजाम के साथ, पाबंदी के साथ, और इख्तिलात से इज्तिनाब, दोस्तों में रहने से इज्तिनाब करें। तो इस बात का हम एहतसाब करते रहें कि हमारा जो हम इल्मे दीन हासिल कर रहे हैं, हम सादेसा में पहुंच गए या हम राबिया में पहुंच गए, हम दौरे में पहुंच गए या हम तखस्सुस में पहुंच गए, हमारे इल्म से हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे पड़ोसियों को क्या फायदा पहुंचा? ये सवाल जरा आप खुद अपने आपके सामने पेश करते रहा करें। इल्तिजाम के साथ अपना एहतसाब कीजिए कि हमारे इल्म दीन से हमारे हमारी हमशीरा को, हमारे भाई को, हमारे वालदेन को क्या नफा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और मेरे दोस्तों अगर आप सोचेंगे, देखें, और दूसरी बात यह भी सोच लिया करें कि एक आदमी, मैं अभी एक 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 हज के सफर में एक एक आलिम हमारे साथ थे टंडोला यार के, मुझे बताने लगे, मैं तो नाई था, नाई लोगों के बाल काटता था और तबलीग वाले मेरे पास आए, मैंने सहरोजा लगाया, सहरोजा लगाकर और फिर मेरी जिंदगी बदल गई। मैं और फिर था भी मैं अहले बिदात में से, बाकायदा उनका यानी जाया करता था, उनके मरकज वगैरह में, और बहुत यानी एहतमाम के साथ, ऐसे नहीं बहुत आगे के अहले बिदत में से। तीन दिन मैंने लगाए और फिर मेरी जिंदगी बदल गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर आलिम हुए, साल लगाया और फरमाया कि आज मेरा पूरा घराना तबलीग में लगा हुआ है। मेरी हमशीरा, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरे भाई सब ने वक्त लगा लिया। तो एक जरा इस बात को जहन में रखिए, एक आदमी तीन दिन लगा के आता है, सारे घर की काया पलट देता है, और हम दस साल लगाते हैं और हमारे इल्मे दीन से कोई नफा नहीं पहुंचता हमारे घर वालों को, है कि नहीं शर्म की बात। तीन दिन लगा के आया उसने, उसकी काया भी पलटी, उसके घर वालों की भी काया पलट गई, और हम दस साल लगा लेते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं पहुंचाते। जरा अपना एहतसाब, ये सवाल अपने आप से करते रहा करें, रोजाना करें। मैं तो कहता हूं कि हमारे इल्मे दीन से हमें, खुद हमें और हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को, भाई बहन को क्या फायदा पहुंच रहा है। और साथ में ये भी कि तबलीग वाले जो तीन दिन लगा लेते हैं उनकी जिंदगी पलट जाती है, उनकी भी और उनके घर वालों की भी वो काया पलट जाती है। नहीं, ऐसी काया पलटती है कि आलिम हाफिज हो जाते हैं, और हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। जब आप इस नुक्ते पे गौर करेंगे फिर आपको कुछ एहसास पैदा होगा। तो भाई इसका एहतमाम कीजिए, कम से कम आप ये कर लें कि घर में शरई पर्दे के एहतमाम के साथ आप तालीम कराएं, एक वक्त में घर वालों को जमा करें, और रात का वक्त बहुत मुनासिब है, ईशा के फौरन बाद का। अब ईशा के बाद जब घर पहुंचे एक वक्त में जमा करें, जब आप यहां से जाएं ना तो बता दें कि भाई हमारे मदरसे से हमें यह हिदायत मिली, यूं कह दो। आप अपने ऊपर ना लें, शर्म आती है ना बाज लोगों को, है ना, दीन के काम में शर्म आती है, दीन का काम ना हो तो कोई शर्म नहीं, बेशर्मी। मुफ्ती जैनुल आबदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां फैसलाबाद के मरकज में एक 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 लड़के से कहा, तालिबे इल्म था, उसने कहा भाई अजान दे दो। उसने कहा हजरत शर्म आ रही है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया भाई किसी बेशरम को बुलाना कि अजान दे दे, जरा बुलाओ किसी बेशरम को कि अजान दे दे। भाई ये क्या बात है, शर्म दीन के काम में शर्म आ रही है, दावत देते हुए हमें शर्म आती है, हैं? दावत देते हुए, दीन की दावत देते हुए शर्म आती है। ये नहीं होता हमसे कि हमारे हम जहाज का सफर कर रहे हैं, रेल का सफर कर रहे हैं, बस का सफर कर रहे हैं, वैगन में सफर कर रहे हैं, लांडी से गुलिस्ताने जौहर आ रहे हैं, बराबर में जो हमारे बैठा है ना, तालिबे इल्म होकर एक तबलीग वाला फौरन दावत देगा, हम तालिबे इल्म होकर दावत नहीं देते। चलो भाई यही सोच के तबलीग में वक्त लगा लो, किसी तरह तो वक्त लगाओ तबलीग में, यही सोच के लगा लो कि हम में ये सलाहियत, जो तबलीग वालों में सलाहियत आ जाती है हमारे अंदर नहीं है, हम दस साल लगा लेते हैं वो सलाहियत नहीं आ रही, वो चीज पैदा नहीं हो रही। चलो यही सोच के तबलीग में वक्त लगा लो। तो एक बात ये जरा इसका आप तालीम का एहतमाम कर लें घर के अंदर, तो आपके गोया इल्म से घर वालों को नफा पहुंचना शुरू हो जाएगा, कम से कम इस वईद से तो आप निकल जाएंगे। ये तीन बातें हो गई, चौथी बात आपसे अर्ज करनी है, बस ये चार बातें करूंगा, चौथी और आखिरी बात वो ये है कि हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आलिम दीन को दीन के तमाम शोबों का जामे होना चाहिए। यह हजरत का मलफूज है, क्योंकि उसको आलिम दीन, हजरत फरमाते हैं उसको आलिम दीन कहा जाता है, वो किसी एक शोबे का आलिम नहीं है, पूरे दीन का आलिम है, लिहाजा उसके अंदर दीन के तमाम शोबे जिंदा होने चाहिए। और फिर हजरत मिसाल देते हैं कि हसीन वो होता है, हसीन उस शख्स को कहते हैं हसीन जिसकी आंख, नाक, कान, दांत, होंठ, सब के सब चीजें हसीन हो, उसको कहते हैं हां ये हसीन आदमी है, कान भी हसीन हो, दांत भी हसीन हो, होंठ भी हसीन हो, आंखें भी हसीन हो, भवें भी हसीन हो, पेशानी भी हसीन हो, उसको कहा जाता है ये हसीन है। सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन एक आंख से काना है तो हसीन कहलाएगा वो। हर चीज मौजूद है, नाक भी खड़ी हुई, रंग भी इंतहाई साफ, आंखें भी बहुत खूबसूरत, एक कान कटा हुआ है, हसीन कहलाएगा वो। हजरत फरमाते हैं हसीन वो है जिसकी हर चीज हसीन हो, आंख नाक कान सब हसीन हो, दांत भी हसीन हो। एक दांत टूटा हो कैसा लगे, जरा सा मुंह खोले कैसा लगे, तो हसीन कहलाए, हसीन उसको नहीं कहते। बात समझ गए आप? इसलिए आपके अंदर दीन के तमाम शोबों को आप लेकर चलें। उसमें बुनियादी शोबे तीन हैं। नंबर एक तालीम व ताल्लुम यानी मदरसा, इससे अपना ताल्लुक कायम रखिए किसी ना किसी दर्जे में, कुछ नहीं तो अपने असातिज़ा से राब्ता रखिए, उनसे मिलते जुलते रहिए। या बाज तालिबे इल्मों को किसी उस्ताद से ज्यादा मुनासबत होती है, जिससे ज्यादा कम से कम दर्जा यह है कि आप जिस उस्ताद से आपको ज्यादा मुनासबत है आप कम से कम उनसे तो राब्ता रखिए। उनसे आप आजकल तो मोबाइल आ गए, आप उनसे रबते में रहिए, गाए गाए उनसे मुलाकात, वरना आला दर्जा यह है कि जितने असातिज़ा हैं सबसे मुलाकात एहतमाम रखिए। ये कम से कम दर्जा है। आला दर्जा यह है कि आप मदरसे में कुछ दो घंटे ही कम से कम पढ़ा लें, फिर अपने काम काज में जो भी हो, या ये कि पूरा ही वक्त मदरसे को दे दें, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा नज़म बन जाए, दो घंटे दे दें, तीन घंटे दे दें, फिर अपना काम काज करना उसमें कर लीजिए। या कम से कम दर्जा यह है कि असातिज़ा से राब्ता रखें। ये भी बड़ी बरकत की चीज बता रहा हूं आपको। तो मदरसे से ताल्लुक, नंबर दो तबलीग से ताल्लुक, जहां तक हो सके। बहुत से तलबा होते हैं, नहीं हमारी मुनासबत नहीं है तबलीग से, वो नहीं है अल्लाह के बंदे, कम से कम तुम लोगों को तरगीब तो दो, उनको निकालो तो सही अल्लाह के रास्ते में, तुम तो जाके मुखालफत पे उतर आते हो। बाज महल्ले वालों ने, यानी मैं एक जगह गया, मैं आपको अपनी बात बताऊं, वहां के लोगों ने मेरा बयान नहीं होने दिया, नहीं आप जाइए, आप वहां से आए, आप यहां वहां के तालिबे इल्म ये बातें की उन्होंने यहां आके, वो तबलीग का मरकज था उस शहर में, और बयान मैं पहले मेरा बयान हुआ अब नहीं होने दिया उन्होंने, ये जी आपके ये आपके लोग आए थे और इस तरह की बातें यहां करके गए हो, और यहां वो आपके तालिबे इल्म भी रहते हैं, वो भी इस तरह की बात करते हैं, फुला फुला आलिम रहते हैं और ये कहते हैं, वो यूं कहते हैं, वो भाई है। और मेरे नजदीक उन्होंने गलत किया जो भी किया, ये मुखालफत क्यों की उन्होंने, उसकी वजह से वो बदजन हुए। मैंने कहा भाई मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन उन्होंने फिर भी बयान की इजाजत नहीं दी, वो मैंने बात नहीं की, मैंने मुतालबा नहीं किया मेरा बयान हो, वहीं के लोग चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं बयान होने देंगे। तो आप उम्मत में तोड़ का बाइस बन रहे हैं। अगर आप तबलीग में नहीं निकलते, आप तरगीब दीजिए, मुखालफत ना कीजिए उसकी। मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह अपने हर खलीफा से यह अहद देते थे, देखो तबलीग की मुखालफत मत करना, तबलीग की मुखालफत मत करना। ये भी हमारे तलबा में बाज तलबा ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल हरगिज। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है उसमें, तबलीग के ऊपर उनका एक बयान है, उसमें साफ ये मसला लिखा है कि तबलीगी जमात की मुखालफत करना जायज नहीं है, जायज नहीं है। चलो भाई मेरी बात नहीं मानते, वो शेखुल इस्लाम है उनकी बात मानो कि ये जो दावत और तबलीग का काम हो रहा है इसकी मुखालफत करना जायज नहीं है। इसी मसले पे अमल करें आप, मुखालफत ना करो। अल्लाह के बंदो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करते। आपको तो उनका मुआविन बनना चाहिए था, आपको तो उनका दस्तो बाजू बनना चाहिए था, आप उनकी मुखालफत पे उतर आए। तो दूसरा ये कि तबलीग से ताल्लुक, तीसरा तज़किए से ताल्लुक। ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك آپ اس کو عموم میں لے لیجئے، یتلو علیہم آیاتک کو دعوت و تبلیغ مراد لے لیجئے آپ اس کے عموم میں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ مدرسہ ہو گیا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ خانقاہ ہو گیا. ان تین چیزوں کو جو اس آیت کے اندر موجود ہیں آپ اپنے اندر زندہ کیجئے. یہ بنیادی طور پہ تین شعبے ہیں جن سے آپ کو تعلق قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے. آپ اس کو فرض کے درجے میں سمجھ لیں، آپ اپنے نزدیک ان کو فرض کر لیجئے کہ میں ان تین شعبوں سے اپنا تعلق قائم رکھوں گا، ان میں حصہ ڈالوں گا، تب تو آپ دین کا کام خوب آسانی سے کر سکیں گے. ورنہ آپ شاید مخالفت پر اتر آئیں، آپ کے بھی مخالف کھڑے ہو جائیں. لہذا یہ چار باتیں میں آپ، پہلی بات کیا تھی؟ شرعی پردہ، اس کا اہتمام. دوسری بات کیا تھی؟ اخلاق کی درستگی. تیسری بات کیا تھی؟ گھر میں کم سے کم درجہ تعلیم کا اہتمام کرنا. اس تعلیم کے ذیل میں آپ ترغیب بھی دے دیجئے، تھوڑا سا آپ کا بیان روز ہو جائے کریں، بس بہت آپ کے دین سے، آپ کے علم سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا گھر والوں کو. چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ دین کے شعبے جو بنیادی ہیں، یعنی مدرسہ، دعوت و تبلیغ اور خانقاہ، تزکیہ، اس کو اپنے اندر زندہ کیجئے. یہ سب ان تین چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں، پھر آپ دیکھیے آپ کے اندر کیسی نورانیت آتی ہے. آپ خود محسوس کریں گے اس کے فوائد کتنے ہیں. بس یہ چار چیزیں ہیں، ان کا آپ اہتمام کر لیں تاکہ مدرسے میں خاص طور پر کلاسوں میں قطع تعلق اور قطع رحمی بہت زیادہ ہے. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ انہوں نے قطع تعلق لہذا اللہ کے لیے کیا ہو، نہیں بھائی یہ بھی صحیح نہیں ہے. درسگاہ میں، ایک درسگاہ میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ناچاقی رکھنا، وہ فوق ثلاث والی جو حدیث ہے، لا یجوز للمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، ہے نا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان سے علیحدگی اختیار کرے تین دن سے زیادہ. بھائی یہ اس طرح مناسب نہیں کہ آپس میں مخاصمت ہو، ناچاقی ہو. جس سے ناچاقی ہو اسے آپ جا کر خود ہی آپ اس سے معذرت کر لیں، معافی تلافی کر لیں، دل میں کوئی بات نہ رکھیں. تو بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جن کا آپ کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، آپ دعا بھی کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ تمام چیزیں، یہ اوصاف پیدا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ دین کا کام خوب خوب لے سکے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.